नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित कार्यक्रम सीप के मोती। हमारे जीवन का आधार हैं विचार, संस्कार, जीवन शैली और कार्य व्यवहार। इन चारों तत्वों के परिष्कार का प्रयास है हमारा कार्यक्रम सीप के मोती। प्रस्तुत है सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक। श्रोताओं, सीप के मोती कार्यक्रम में हमने महायायावर राहुल सांकृत्यायन के विराट व्यक्तित्व पर चर्चा की थी, उनके कुछ आयामों को छूने का प्रयास किया था। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे इतिहासविद राहुल सांकृत्यायन के जीवन दर्शन पर और उनके व्यक्तित्व के कुछ और पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे, उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ और नज़दीक पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम जानते ही हैं कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते थे और कोलकाता, काशी, दार्जिलिंग, तिब्बत, नेपाल, चीन, श्रीलंका और सोवियत संघ सहित अनेक देशों की उन्होंने यात्राएं की थीं। लेकिन ये घुमक्कड़ी छुट्टियों में कहीं देशाटन पर जाने जैसी नहीं थी। वो एक महान यायावर थे। वो स्वयं कहते थे कि बढ़िया से बढ़िया होटलों में ठहरने, बढ़िया से बढ़िया विमानों पर सैर करने वालों को घुमक्कड़ कहना इस महान शब्द के प्रति भारी अन्याय करना है। सच ये है कि वो एक साधारण घुमक्कड़ नहीं थे जो किसी देश में जाकर वहाँ के भूगोल मात्र से प्रभावित हों। वो जहाँ जाते थे वहाँ की संस्कृति को आत्मसात करते। उनकी दृष्टि व्यापक थी, इसलिए वो एक अद्भुत तर्कशास्त्री, समाजशास्त्री, दर्शनशास्त्री और इतिहासवेत्ता के रूप में पहचाने गए। लेकिन विशेष बात ये थी कि महायायावर होने के बावजूद वो कभी भी अपनी जड़ों से नहीं कटे। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए वो अपनी आवाज़ भी बुलंद करते रहे, चाहे बात महिलाओं की हो, किसानों की हो या देश की आज़ादी की। वो स्वयं कहा करते थे कि घुमक्कड़ होने का अर्थ ये नहीं है कि उसका अपनी मातृभूमि से प्रेम ही न हो। उनका प्रेम मातृभूमि से भी था और मातृभाषा से भी। राहुल सांकृत्यायन जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने गांव लौट आए थे। तो आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष इतिहास विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। नमस्कार ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
नमस्कार सुनीता जी।
अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरे मन में एक सहज जिज्ञासा ये थी ब्रजेश जी कि हमने लंबी चर्चा की राहुल जी पर और अब मन में ये आता है कि उन्होंने साहित्य सृजन भी किया, इतिहास लेखन भी किया, तो वस्तुतः वो थे कौन?
यह प्रश्न आपने जो पूछा है तो निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी इस बात को जानना चाहेंगे। उनको साहित्यकार भी कहा जाता है और इतिहासकार भी। उनके साथ जो संकट है वो ये है कि इतिहासकारों का कहना ये है कि वो साहित्यकार थे और इसीलिए इतिहास में उनको कोई स्थान नहीं मिल पाया। उनके ग्रंथ भी कहीं इतिहास के कोर्स में देखे नहीं जाते। और साहित्यकारों ने भी कहा कि उनके जो ग्रंथ हैं वो इतिहास के बोझ से दबे हुए हैं। तो उस व्यक्ति की एक स्थिति देखिए, बीच की स्थिति के साहित्यकार उनको इतिहासकार की ओर कह रहे हैं वो इतिहासकार ज्यादा थे, इतिहासकार कह रहे हैं वो साहित्यकार ज्यादा थे। तो आपको बता दें कि उन्होंने इतिहास पर तो प्योर हिस्ट्री के ग्रंथ तो लिखे ही, साथ में कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जैसे जय औदे, राजस्थानी रनिवास सिंह जन। और उनकी जो उपन्यासों पर जो एनालिसिस है वो आप देखिए कि डॉक्टर जगदीश नारायण गुप्त कहते हैं, एक साहित्यकार है ये, कि राहुल जी में उपन्यासकार की अपेक्षा इतिहासज्ञ और बहुभाषाविद के तत्व तो अधिक प्रधान एवं शक्तिशाली है। ऐतिहासिक तथ्यों के समाहित करने के प्रयास में कथा की गति शिथिल पड़ी हुई है। और डॉक्टर गणेशन एक और साहित्यकार है, वो लिखते हैं कि संचित तथ्यों के आधार पर लिखित उनके उपन्यासों में कल्पना अधिक नहीं रहती, जिससे वे प्राय ऐतिहासिक उपन्यास न होकर औपन्यासिक इतिहास हो जाते हैं। और एक और साहित्यकार डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन भी ऐसी ही बात करते हुए कहते हैं कि उनके ऐतिहासिक उपन्यासों को सांस्कृतिक इतिहास कहा जा सकता है। और एक प्रख्यात विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने कहा है कि इन उपन्यासों की वास्तविक महिमा अतीत के भारत के सजीव चित्रण उपस्थित करने में है। अब आपको बता दें, स्वयं राहुल जी की बात करें तो उनका खुद का उद्देश्य जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का था कि इतिहास को मूर्तिमान करना ही मेरा उद्देश्य है, और वो एक शब्द को बार बार कहते थे कि अपने द्वारा अर्जित ज्ञान में आम जनता की भागीदारी मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो सुनीता जी देखिए वो कितने महान थे कि उन्होंने प्योर हिस्ट्री पर अकबर लिखा, ऋग्वेदिक कार्य लिखा, मध्य एशिया का इतिहास लिखा, लेकिन उनको लगा कि ये तो वही लोग पढ़ेंगे जो पूरी तरह से इतिहास के सुधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, लेकिन इतिहास को कैसे जाने। तो आम आदमी तक पहुंचने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। एक और जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी कि उन्होंने अपने उपन्यासों में समता और बंधुत्व का संदेश देकर अहम भाव का उन्मूलन कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना व्यक्त की है। और जो प्रश्न है साहित्यकार तो वो निश्चित रूप से थे क्योंकि उन्होंने यात्रा साहित्य लिखा और यात्रा साहित्य के वो जनक भी कहे जाते हैं हिंदी में यात्रा साहित्य के, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो साहित्यकार थे क्योंकि उनकी जो तुम्हारी से दिमागी गुलामी पूरी तरह से साहित्यिक ग्रंथ है। और इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि डॉक्टर नामवर सिंह एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने जो मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके बारे में उनकी जो टीप है वो यहाँ पर उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जिन्हें एक अद्भुत ग्रंथ लिखा था उसकी टक्कर का ग्रंथ आज अंग्रेजी में भी नहीं है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का तो सवाल ही नहीं उठता। राहुल जी ने हजारों वर्षों का यह मध्य एशिया का इतिहास अकेले लिखा, लगभग 30 वर्ष तक इसके लिए सामग्री एकत्रित की और इसके लिए कई भाषाएं सीखी। उन भाषाओं के द्वारा कलानुक्रम में भूखंड में फैली घटनाओं को समझा और मध्य एशिया के इतिहास का विशाल ग्रंथ दो जिल्दों में लिखा। अब उनके पांडित्य को देखना है कि राहुल क्या जानते थे और इतिहास दर्शन धर्म एवं संस्कृति की कितनी बड़ी परंपराओं से उनका परिचय था, तो मध्य एशिया का इतिहास हमें देखना चाहिए। और आपको बता दें 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने मध्य एशिया के इतिहास पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा था। तो निश्चित रूप से आपको बताएं कि वो एक इतिहासकारी थे मेरा ऐसा मानना है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी यात्राओं में उनका पूरा ध्यान इतिहास पर रहता था और इतिहास भूगोल इसलिए वो लिखते भी हैं कि जिस बात को पुरातत्व का समर्थन नहीं है उसकी नींव बालू पर है, और लेकिन इतिहास को मूर्तिमान करने के लिए उन्होंने साहित्य का सृजन किया।
ये जान पा रहे हैं कि वो एक गंभीर साहित्य इतिहासकार थे और वो इतिहास लोगों तक पहुंच सके इस उद्देश्य परक दृष्टि के साथ वो साहित्य का सृजन करते थे। और जैसा कि आपने बताया कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, तो दोनों का मेल उनका जो कार्य है उसमें नजर आता है। तो वैसे बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व उनका है। अच्छा ब्रजेश जी, राहुल संकृत्यायन जी ने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म ग्रंथों को वापस लाने का बहुत कठिन कार्य भी, दुरूह कार्य भी किया था और बहुत मेहनत का ये काम था, इसके विषय में जरूर विस्तार से हमारे सुनने वालों को आप बताएं।
उनके बारे में ये तो सभी जानते हैं कि पहले वो परसामठ में रामोदर साधु बने, फिर एक आर्य समाजी बने और आर्य समाजी बनते हुए जब उसका प्रचार प्रसार किया तो लखनऊ में उनकी भेंट भिक्षु बसंत बोधानंद जी से हुई और 1916 में उन्होंने बौद्ध विहार देखा, उसके बारे में जाना। उसके बाद उन्होंने जो देखा कि बौद्ध धर्म की स्थिति भारत में काफी शोचनीय है और जो बौद्ध स्मारक है वो देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में और जो बौद्ध साहित्य है वो लुप्त प्राय है। अब उनका जो ध्यान था, क्योंकि अध्ययन अध्यापन उनका शौक था, तो अध्ययन के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनका अनुसंधान किया। और आप देखिए कि जहां आपका फोकस जाता है वहीं पर ऊर्जा का प्रभाव होता है और उसी के अनुसार परिणाम आते हैं। तो 1920 में जब वो बौद्ध धर्म के स्थलों की यात्रा करने का उन्होंने निश्चय किया, जो स्थविर चंद्रमणि थे उनसे उनकी भेंट हुई कुशीनगर में, और यह चंद्रमणि वही है जिन्होंने की बी आर अम्बेडकर साहब को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इन्होंने बुद्ध की विशाल मूर्ति के दर्शन कराए राहुल जी को, उस समय वो आर्य समाज के प्रचारक थे और उन्होंने स्वयं बड़ी अच्छी बात लिखी है कि इस विशाल मूर्ति को पूजने से मेरे सिर हृदय एवं हाथों को मेरे आर्य समाजी विचार भी नहीं रोक सके, मेरे मन को मैंने व्याख्या दी, मैं ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा हूँ, यह एक ऋषि के प्रति मेरी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और उसके बाद उन्होंने कुशीनगर में अशोक के अभिलेख भी देखे और फिर उसके बाद जितने भी अभिलेख थे उनका उन्होंने अध्ययन किया और फिर हुआनसांग को पढ़ा उन्होंने चीनी यात्री फायान को पढ़ा, इत्सिंग को पढ़ा, उनके यात्रा वृत्तांत पढ़े, उसके बाद जिस मार्ग को उन्होंने फॉलो किया था उस मार्ग पर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म के स्थलों की यात्राएं लिखी और इसी प्रकार वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के इतने करीब आ गए कि वो श्रीलंका के विद्यालंकार बिहार पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक तरफ संत का अध्यापन किया आचार्य के रूप में तो दूसरी ओर पाली का अध्ययन भी किया और वहीं पर उन्होंने तीनों पटकों का जो गहन अध्ययन किया उसके लिए इनको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी गई और यहाँ उन्होंने पाया कि अभी भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो कि उपलब्ध नहीं है और वो तिब्बत जा चुके हैं और उसका कारण ये था कि जब भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो उन्होंने नालंदा के विहार पर आक्रमण किया था, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वो पूरे के पूरे अपने जो ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के उनको लेकर तिब्बत चले गए थे तो राहुल मालूम था तो इसलिए उन्होंने तिब्बत जाकर उन ग्रंथों को वापस लाने के लिए प्रयास किया और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जो थे उन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप तिब्बत जाएं, यह काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार पहली बार वो दिसंबर 28 में तिब्बत गए, दूसरी बार मई 34 में तिब्बत गए, तीसरी बार फरवरी 1936 में तिब्बत गए और चौथी बार मई 1938 में तिब्बत गए। और तिब्बत में आपको बता दें कि वो रामोदर साधु का भेष बनाकर यहाँ से गए थे क्योंकि उस समय नेपाल की सरकार, भारत की सरकार और तिब्बत की सरकार वो कोई भी प्रदेश को बर्जन रखती थी और जो ब्रिटेन की प्रजा है उसके प्रति तो उनके मन में बड़ा ये भाव था कि ये कुछ भी कर सकते हैं तो इसे छुपाते वो जाते थे। और जब ये ग्रंथ 22 कचरों पर लाद कर, आपको बताने की वहां पर जो ग्रंथ लिखने में भी आप ये मान के चलो कि वो इतना छुप छुप के काम करते थे कि अगर वो पकड़े जाते तो मौत सुनिश्चित थी, लेकिन उन्होंने इतनी होशियारी से तहखानों में बैठ बैठ कर काम किया, जो ग्रंथ मिल गया उनको एकत्रित किया, जो नहीं मिल पाए उनकी प्रचलित खुद की राइटिंग में तैयार की। इस प्रकार 22 कचरों पर लाद कर पूरे के पूरे ग्रंथ भारत लाए और जब ब्रिटिश म्यूजियम वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उनकी जो सामग्री के महत्व को देखते हुए उनसे कहा कि यह सामग्री हमें आप दे दीजिए, हम इसके बदले आपको 70,000 पाउंड देंगे। तो राहुल फ्रांकेंस्टाइन ने कहा था कि मैं भारत वर्ष का एक गरीब लेखक हूँ और मैं ज्ञान बेचने में विश्वास नहीं करता, इसकी जहाँ आवश्यकता होगी यह वही जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना था उसमें पूरे ग्रंथ थे वो वहां रख दिए। तो ये तिब्बत अनुसंधान उनका बड़ा बेहतर अनुसंधान था, इसके लिए सदैव बौद्ध धर्म के ग्रंथ उनका कृतज्ञ रहेगा।
बिल्कुल, ये प्रसंग सुनकर मन श्रद्धा से झुक जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान भारत से आता हूँ और हमारा देश ज्ञान बेचता नहीं है। क्या बात कह दी उन्होंने। और कितनी मेहनत से, मतलब चार चार बार तिब्बत की यात्रा करना, आपने बताया कि 1928, 1934, 36 और फिर 1938, 4 साल तक वो गए और फिर तहखानों में बैठकर जिन ग्रंथों की प्रतिलिपियां नहीं थी उनको अपने हाथों से लिखना और फिर लेकर आना अपने देश, बहुत मेहनत का भी एक ये काम समझ में आता है। तो हम जितना भी साधुवाद करें वो कम ही होगा। अच्छा ब्रजेश जी, राहुल सांकृत्यायन ने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया था ये भी हम जानते हैं, तो उनकी क्या भूमिका थी इस पर भी आप एक चर्चा करें।
जैसा कि हम कई बार अपनी चर्चा में बात कर चुके हैं कि व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि या तो वो कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में लिखें और या ऐसा कुछ लिख जाए कि आने वाली पीढ़ियां उसके लिखे को पढ़ें। तो राहुल गांधी इस मामले में बड़े एक अद्भुत व्यक्तित्व है कि उन्होंने कर्म भी ऐसे किए कि जिन पर हम लिख सकते हैं और उन्होंने लिखा भी ऐसा कि जिनको हम आज भी पढ़ते रहते हैं। ये बड़ा अच्छी चीज है। तो यहाँ पर वो कर्मवीर के रूप में हमें सामने दिखते हैं कि देखिए जब वो यात्राएं कर रहे थे और उन्हीं यात्राओं के दौरान उनको पता चला कि भारत में असहयोग आंदोलन चलता है और उनको लगा कि ये स्वतंत्रता का महायज्ञ है और उनको लगा कि इस महायज्ञ में मेरी द्वारा आहुति डाली जानी चाहिए और इस प्रकार वो छपरा आ गए और छपरा आकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको राजद्रोह में 2 वर्ष का कारावास दिया गया और हजारीबाग जेल में रखा गया। तो आप देखिए कि बाद में उन्होंने खुद लिखा मुझे पता ही नहीं चला 2 वर्ष कब निकल गए क्योंकि जितनी भी सामग्री मैंने एकत्रित की थी उनको लिखने का अब वक्त मिला। तो आप देखिए कैसे समय का सदुपयोग करता है कि उन्होंने हजारीबाग जेल में रहकर भी काफी कुछ और जब अचानक से गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो लगा कि भाई जब पूरा देश इतना चेतना जागृत हुई ऐसे में ये वापस लेना ठीक नहीं है। फिर जिस प्रकार राज्य दल की स्थापना की थी साथी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने और ये परिवर्तनवादी कहलाते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई गांधी जी को जेल हो गई है तो ऐसा नहीं हम चुप बैठ जाए, तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। उसमें राहुल संकर्तन ने भी इनका चित्तरंजन दास का साथ दिया था। उन्होंने मेरे असहयोग के साथी पुस्तक भी लिखी और काशी प्रसाद जायसवाल उनसे मिले और उनसे कहा कि देखिए भाई आप तो स्वाधीनता संग्राम में भाग ले रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है, कई स्वाधीनता संग्राम सेनानी है, लेकिन तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म के ग्रंथों को वापस लाने का जो एक भागीरथी प्रयास है वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई कर सकता है,
कोई और कर सकता है
कि आप भाग। तो राहुल जी बड़े दिन काशी प्रसाद जायसवाल के कहने पर, और चूंकि बौद्ध धर्म उनको भी रुचि थी, तो फिर उन्होंने परिवर्तित किया और बौद्ध धर्म के ग्रंथों लगा दिया और वो जो करते थे पूरी तन्मयता के साथ करते थे।
बिल्कुल बिल्कुल।
जयपाल ने भी लिखा है कि कहीं मैं राहुल जी और भारत की बदलती तकदीर के बीच तो नहीं खड़ा, क्या मैंने यह ठीक किया, कहीं मैं गलत तो नहीं था, राहुल सांकृत्या जनता के आदमी थे तो उनको भी इस बात का अफसोस था, लेकिन फिर भी चूंकि उनके मित्र थे और उन्होंने उनको तिब्बत अनुसंधान की ओर प्रेरित किया, संग्राम में उनका और उनके मेरे असहयोग के साथी पुस्तक को पढ़कर हम बेहतर ढंग से जान सकते कितना महान काम उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में किया था।
तो असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने इसमें भाग लिया और जेल यात्रा भी की और जेल यात्रा का सदुपयोग लेखन में किया। तो सदैव एक व्यक्ति जो क्रियाशील है, जो हमेशा कुछ सकारात्मक रच रहा है, कर रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व उनका नजर आता है। अच्छा, उन्होंने किसानों के हित में भी बहुत सा काम किया है, उस पर भी आप रोशनी डालें कि किस तरह से उन्होंने किसानों के हित की बात की, किसान सभा में किस तरह से साथ दिया।
मुझे याद आता है कि अंबारी सत्याग्रह जो हुआ था 1939 में, उसमें उन्होंने भाग लिया था, किसानों को एकजुट किया, इसलिए किसान उन्होंने उन्हें कृषक मुक्तिदाता की पदवी से अलंकृत किया था। तो आप समझ सकते हैं किसानों के प्रति उनके मन में कितनी चेतना होगी, क्योंकि वो देश विदेश की यात्रा की थी उन्होंने और भारत में गरीबी को देखा था, कृषकों की स्थिति को देखा था, उन्होंने किस प्रकार कृषकों से जमींदार उनकी खेती छीन रहे हैं, अंग्रेज भी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और वो उसी बीच में बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ कार्यानंद शर्मा जी भी थे, यदुनंदन शर्मा जी भी थे और राहुल संकरत्यायन भी थे। और उसी समय जब छपरा में राहुल संकरत्यायन थे तो उनको यह बात पता चली कि कृषकों की जमीन है वो धीरे धीरे जमींदार हड़पते जा रहे हैं और जमींदारों को ब्रिटिश सरकार के बर्दाश्त करते हैं और कृषक जब अपनी खेती करने जाता है तो उसको हरी बेगारी करना पड़ती है। हरी बेगारी यानी वे अपनी खेती में हल जब चला सकता है जब पहले जमींदार की खेती पर हल जोते। तो कोई भी किसान प्रतिदिन अपने खेत में बाद में पहले जमींदार के फ्री में जाकर उसको हल से खेत जोतना पड़ेगा, तब अपना खेत जोतेगा। तो ये चीज बड़ी बेकार थी और इसको लेकर जब एक अंबारी का एक किसान था रामधनी मेहतो, तो उसने विरोध किया तो बाकी जो जमींदार थे चंद्रेश्वर सिंह, उन्होंने उनको बहुत मारा। इससे सभी किसान एकजुट हो गए और राहुल संकरत्यायन के पास गए। राहुल संकरत्यायन तो वैसे ही कृषकों के मन में उनके प्रति काफी दया का भाव था और ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के प्रति इसी को लेकर घृणा का भाव था, तो उन्होंने अंबारी में सत्याग्रह किया 24 फरवरी 1939। उस दिन इन्होंने सबसे पहले जाकर गन्ना का खेत था उसमें गन्ने काटे और यह पंडित था, तो इसलिए उन पर जो लठैत था कुर्बान जमींदार का, उसने लाठी के सिर पर प्रहार किया। और आपको बता दें कि इसमें पुलिस ने जब हलचल मची तो 52 लोगों को गिरफ्तार किया और राहुल के सिर से खून का फव्वारा फूटता और उस पर प्रोफेसर मनोरंजन ने बड़ी बेहतरीन कविता लिखी थी कि राहुल के सर से खून गिरे। और ये कविता जो थी वो पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में ऐसी छपी कि वो इतनी जल्दी से छा गई कि सारे किसान एकजुट हो गए। अच्छा। और रामदास सैनीपुरु एक बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने बड़ा अच्छा उस समय भविष्यवाणी की थी कि एक महान मनीषी के सिर से गिरा खून ब्रिटिश शासन के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। और आप देखिए बहुत ही कम समय बाद ही भारत को अंग्रेजों को स्वतंत्र करना पड़ा। चेतना के बारे में जितनी हम बात करें उतना कुछ।
आज के समय में हम जब जी रहे होते हैं तो हम जी कहीं रहे होते हैं और हमारा मन कहीं और होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। लेकिन राहुल जी का व्यक्तित्व ऐसा दिख रहा है कि वो जिस पल में थे उस पल में संपूर्ण रूप से वो समाहित थे, वो समग्र रूप से गहराई के साथ उस पल को जीते थे, आसपास जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी तरह से संलग्न होकर वो जीते थे। इसलिए इतने उनके जीवन के और व्यक्तित्व के आयाम नज़र आते हैं, इतनी जगह उन्होंने काम किया है। तो इसी तरह से जो देश की आधी आबादी है, इस दुनिया की आधी आबादी है, महिलाओं पर भी उनका एक चिंतन रहा है, उस पर भी आप प्रकाश डालें कि क्या उनके विचार थे।
महिला चिंतन की जहां तक बात है तो आपको बता दें कि वो नारी को पुरुषों की बराबरी पर खड़ा होने का देखना चाहते थे। उनका मानना था कि हर नारी को ये अधिकार है कि पुरुषों की बराबरी पर आकर खड़ी हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं है तो जो सिर्फ पुरुष करें, नारी को भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। वो नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए और आजादी के लिए जन प्रतिज्ञ थे। उन्होंने राजस्थानी जनिवास, बहुरंगी, मधुपुरी आदि पुस्तकों में तत्वहीन नारी की स्थिति का काफी सजीव वर्णन किया है। उनका कहना था कि यह बहुत गलत है कि जब लड़का होता है तो खुशी मनाई जाती है और लड़की के होने पर मातम मनाया जाता है, यह बात और उनका कहना था कि शादी के बाद भी स्त्री की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता। बाल विवाह का भी उन्होंने विरोध किया और विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। उनका जब बाल विवाह है, कई 55 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति एक बालिका से विवाह कर रहा है तो उसका तो विधवा होना सुनिश्चित है, तो उस विवाह को पुनर्विवाह का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया और उनका ये स्पष्ट मानना था कि जो राजे रजवाड़े हैं, जमींदार हैं, वो उन्मुक्त भोग का साधन नारी को समझते हैं। उनके अंतःपुर में रहकर नारी काफी पीड़ा भुगतती रहती है। उन्होंने दहेज प्रथा का भी विरोध किया। उनका स्पष्ट मानना था कि वह समाज निश्चित रूप से पतंकी और उन्मुख होगा जो दहेज का अनुसरण करेगा। और उनको संदेश था नारियों के लिए कि हर नारी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, और जब तक नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी तब तक उसको अत्याचार सहना पड़ेंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है कि नारी शिक्षा प्राप्त करे, आर्थिक स्वतंत्रता ग्रहण करे और घुमक्कड़ी करे, दुनिया को देखे, दुनिया की नारियों को समझे। उन्होंने एक 22वीं सदी पुस्तक लिखी थी और उसमें लिखा था कि आज आप नारी को दबा रहे हैं, और मैं स्पष्ट तौर से भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि 22वीं सदी नारियों की सदी होगी। नारी विदेश भी अकेली जा रही होगी, अकेली घूम रही होगी, अकेले के दम पर बहुत कुछ करने में सक्षम होगी। आप उसको बहुत अधिक तक घर के काम में बंदी बना के नहीं रख सकते।
क्या बात है। और उनका ये जो कहना था, ये जो कथन था, वो सच भी साबित हुआ है। तो एक सूत्र वाक्य उन्होंने दिया कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो आर्थिक रूप से अगर स्वतंत्र होंगी, यानी शिक्षा ग्रहण करें, और आर्थिक स्वतंत्रता अगर होगी तो उनकी दशा अच्छी हो सकती है। अच्छा ब्रजेश जी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि राहुल सांकृत्यायन बहुभाषाविद थे, देश विदेश की 30 भाषाएं लगभग वो जानते थे और अनेक भाषाओं में साहित्य सृजन भी किया, लेकिन जब राष्ट्रभाषा की बात आती है तो वो हिंदी के साथ आकर खड़े होते हैं। तो इस पर प्रकाश डालें कि क्या उनका अभिमत था इस संबंध में।
आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन लगभग 36 भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने देश विदेश की कई भाषाएं सीखी थी, 8 भाषाओं के तो वो मर्मज्ञ थे।
बिल्कुल।
तो सबके बावजूद भी उनका यह स्पष्ट मानना था कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही समर्थन दिया जाना चाहिए, और वो कहते भी थे कि भारत राष्ट्रीयता का यदि कोई प्रतीक भाषा है तो वह मात्र हिंदी है। समस्त भारत को एकता के सूत्र में पिरोए रखने का काम हिंदी बेहतर ढंग से कर सकती है। उनका कहना था कि भाषा ने मनुष्य को समाज के रूप में संगठित किया है और समाज ने ही भाषा को बनाया है। भाषा एकता की जबरदस्त कड़ी है, और इस एकता को अगर बनाना है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर पूरी भारत को एकता के सूत्र में आसानी के साथ पिरोया जा सकता है। कमला सांकृत्यायन जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है उनके बारे में कि बहुभाषाविद होने पर भी हिंदी के महान सेवक एवं पक्षधर राहुल जी थे। उन्होंने हिंदी में ही सोचा, हिंदी में ही लिखा और अपने जीवन के अंत तक हिंदी भाषा एवं उसके बांग्मय के भंडार को समृद्ध करते रहे। वे हिंदी को मातृभाषा नहीं मानते थे, और मातृभाषा को लेकर उनका बड़ा अच्छी बात उन्होंने कहा है कि मातृभाषा क्षेत्र की अपनी भाषा है। आपको शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि निज उन्नति का मूल मातृभाषा ही है, क्योंकि वो स्पष्ट कहते थे कि सामाजिक चेतना के लिए मातृभाषा को अपनाना जरूरी है। और मातृभाषा वह भाषा जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी आराम से पढ़ लिख बोल सकता है। मातृभाषा के प्रेम का परिचय उन्होंने कुछ रचनाएं लिखकर किया, ऐसा नहीं, उन्होंने की जो जितनी भी उनकी रचना है उसमें भोजपुरी उनकी मातृभाषा थी, तो भोजपुरी में उन्होंने कई रचनाएं की है। तो इस प्रकार राहुल शंकरचंद का जो भाषा पर चिंतन था वो बहुत ही अच्छा था। और राष्ट्रभाषा हिंदी को क्यों बनाया जाए और राष्ट्रभाषा बनने के बावजूद भी मातृभाषा की अस्मिता क्यों बनी रहनी चाहिए, उस पर उन्होंने विचार किया। और आपको बता दें कि दार्जिलिंग में वो अंतिम समय में रहे और हिंदी की सेवा करते करते ही 14 अप्रैल सन 1963 को उनका महाप्रयाण हो गया। और निश्चित रूप से आज भी हम उनको भूल नहीं सकते, उनके योगदान को भूल नहीं सकते। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया था।
तो क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को बखूबी कहा करते थे और हिंदी राष्ट्रभाषा हो इसकी वो वकालत करते थे। और उनका एक कहा मुझे भी याद आता है कि वो कहते थे कि मैंने नाम बदला, वेशभूषा बदली, खान पान बदला, संप्रदाय बदला, लेकिन हिंदी के संबंध में मैंने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इस तरह से बहुत ही विस्तार के साथ महापंडित राहुल शंकरत्यायन पर हमने चर्चा की, उनके जीवन दर्शन की हमने बात की ब्रजेश जी। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी न केवल हिंदी साहित्य बल्कि समूचे भारतीय वांग्मय के एक महारथी थे वो। और उनका जो कृतित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो हमेशा वंदनीय है, पूजनीय है। और उनका रचा साहित्य हम तक पहुँचे, हम उसे पढ़ें, ये आवश्यक लगता है। आज हमारे बीच आप उपस्थित हुए और इतने विस्तार से इस विषय पर बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, इतिहासविद राहुल शंकरत्यायन का जीवन दर्शन, इस विषय पर हमने आज चर्चा की। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी।
सीप के मोती, सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक आपने सुना। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।